This morning's subject is the character of God, communicable attributes.
और आज सुबह जो है हम खुदा की जो सिफात मुश्तरका है उन पर गौर करेंगे.
I remind us all of the common twofold distinction in God's attributes or perfections.
तो आज हम जो है वो उन दोहरी जो सिफात है उन पर गौर करेंगे.
His incommunicable attributes and communicable attributes.
यानी उसकी कल भी हमने बात की थी कि उसकी दो तरह की सिफात है, सिफात गैर मुश्तरका और सिफात मुश्तरका.
God's incommunicable attributes cannot be communicated to mere creatures like us.
So, खुदा की जो नाकाबले मुश्तरका जो गैर मुश्तरका सिफात है वो इंसानों के पास नहीं है.
We can never become absolutely one or eternal like God.
हम खुदा की तरह अबदी और अजली नहीं हैं.
As we saw last night.
जिस तरह हमने पिछली रात सीखा.
God's communicable attributes can be and are communicated to God's people in a creaturely measure.
और खुदा की जो सिफात मुश्तरका है वो इंसानों में खुदा ने इस तरह से रखी हैं कि वो इंसान भी उन सिफात को रखते हैं.
God's communicable attributes include his wisdom and truth.
उसमें खुदा की हिकमत है और सच्चाई है.
Holiness and righteousness.
रास्तबाजी और पाकीज़गी है.
Goodness and grace.
खुदा की भलाई और फजल है.
Love and long suffering and mercy.
और मोहब्बत, तहम्मुल और शफ़क़त है.
As with our last session,
हमारा जो पिछला सेशन था,
I will develop two of God's communicable attributes.
तो मैंने खुदा की दो सिफातों जो सिफात हैं उन पर गौर किया था.
Namely God's righteousness and God's wisdom.
और हमने खुदा की रास्ती पर या रास्तबाजी पर और खुदा की हिकमत पर गौर किया था.
God's other communicable attributes could be raised with me.
इनमें और भी जो है बातें इस पर की जा सकती है.
In the question time or privately afterwards.
आप मुझे सवाल जवाब में वो पूछ सकते हैं या जब भी आपको टाइम मिले मुझसे शख्सी तौर पर पूछ सकते हैं.
Let us start with the righteousness of God.
आज हम खुदा की रास्तबाजी पर या रास्ती पर बात करेंगे.
The key idea in righteousness is a standard, a moral standard.
खुदा की जो रास्ती है या रास्तबाजी है उसका एक अपना मयार है.
Righteousness is measuring up to the standard.
तो जो रास्तबाजी है या रास्ती है वही जो है वो अखलाकी मयार को मुतय्यन करती है.
This idea of standard is key in the Hebrew and Greek words for righteousness.
तो इब्रानी और यूनानी में रास्तबाजी के लिए जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं.
So what is the standard of God's righteousness?
तो खुदा के नजदीक क्या मयार है रास्ते का या रास्तबाजी का?
Should someone open the curtains? Bit more. I think we'll pause a minute here, Arslan.
Yeah, sure.
The standard of God's righteousness is not
खुदा की रास्तबाजी नहीं है
the sense of right or wrong of an individual or a community.
कि किसी शख्स का गलत या सही नहीं है.
The standard for God is not national or even international law.
और ना ही खुदा की रास्तबाजी कोई मकामी या बैनुल अक़वामी जो है वो मयार है.
God's standard is holy himself.
खुदा की जो रास्ते का मयार है वो पाकीज़गी है.
God is self-sufficient in everything including his righteousness.
खुदा जो है वो खुद पर ही इन्हिसार करता है, यानी वो किसी दूसरे का दूसरे पर मुनासर नहीं है, इसलिए ये खूबी यानी ये सिफत भी उसी में पाई जाती है.
He needs nothing and no one for his own standard.
और इसलिए वो हर एक को जानता है कि कौन उसके मयार के मुताबिक है या नहीं.
God's righteousness is eternal.
खुदा की जो रास्ती है या रास्तबाजी है वो भी असली और अबदी है.
Before the existence of men or angels.
हत्ता कि ये इंसानों और फरिश्तों की तखलीक से पहले से मौजूद है.
Let me give you a definition of God's righteousness.
मुझे मैं आपके सामने खुदा की रास्ती या रास्तबाजी की तारीफ पेश करूंगा.
God's righteousness is his own unswerving conformity to himself as his own sole and complete standard.
तो खुदा जो है वो آپ اس سے سوچیں کہ خدا کے نزدیک خدا کس طرح راست ہے اپنے وعدوں میں, تو اسی کی راستی جو ہے اس کے نزدیک ایک معیار ہے.
God's righteousness is his perfect accord with his own sovereignty, infinity, eternity and unchangeability.
اور خدا کی جو یہ صفت ہے راستی کی یا راست بازی کی, وہ اس کے کامل ہونے, اس کے جلال کے, اس کی قدرت کے بالکل کہہ لیں کہ عین مطابق ہے.
God unswervingly conforms to his own wisdom, power, holiness, justice, goodness and truth.
اور یہ ساری جو خوبیاں ہیں, یعنی سچائی, بھلائی, راستی, راست بازی, حکمت اور خدا کی جو حاکم مطلق ہونے کی صفت ہے, یہ سب خدا کی صفات ہیں.
I say again, the key idea of righteousness is conformity to a standard.
تو اس لیے اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کے نزدیک جو ہے ایک معیار ہے, اخلاقی معیار ہے راست بازی کا.
Let us now consider God's righteousness and the Trinity.
اس لیے آئے ہم خدا کی راست بازی پر اور پاک تثلیث پر غور کریں.
Each of the three persons is in perfect conformity to God's being.
تو جب ہم تثلیث میں تینوں اشخاص کی بات کرتے ہیں تو تینوں بالکل ایک جیسے ہیں, جیسے کہ کل بھی ہم نے بات کی.
Father, Son and Holy Spirit are 100% divine.
تو یہ تینوں شخصیات جو ہیں یہ کامل طور پر الہی ہیں.
Each of the three persons possesses all of the Godhead.
اور جو صفات ایک میں ہیں وہ تینوں میں, ایک ہی صفات تینوں میں پائی جاتی ہیں.
They measure up to the standard.
اور یہی ان کا معیار ہے.
This is contrary to Arianism.
یہ جو Arianism کی تعلیم تھی اس کے خلاف ہے.
And all subordinationism.
اور اسی طرح سے سبورڈینیشنزم کے بھی.
For in God's righteousness,
خدا کی راست بازی میں,
the Father, the Son and the Holy Spirit,
باپ, بیٹا اور القدس,
are in total accordance with all the perfections of God.
تو یہ تینوں جو شخصیات ہیں یہ خدا کے معیار کے عین مطابق ہیں.
Let's consider God's righteousness and predestination.
اور ابھی ہم جو ہے وہ تقدیر جو ہے, predestination کے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے تقدیر, جسے ہم قسمت بھی کہتے ہیں یا مقدر کہتے ہیں. تو خدا کی ازلی, خدا کا ازلی ارادہ جو ہے وہ تقدیر کہلاتا ہے.
God's word teaches double predestination of humans and angels.
تو جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں دو طرح کی خدا کے جو ازلی ارادے کے بارے میں بیان کرتی ہے, یعنی ازلی ارادہ ایک ہی ہے لیکن وہ دو طرح سے اس کو پیش کرتی ہے.
Election is God's eternal and gracious choice of some sinners to everlasting life in Jesus.
اور اس میں یہ شامل ہے کہ بعض لوگ جن پر خدا رحم کرے گا وہ خدا ان کو اپنے لیے چن لیتا ہے.
Reprobation is God's eternal and just decision.
اور اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں رد کر دیا گیا ہے.
To pass by and ordain to destruction others.
اور یہ ہلاکت کا, یعنی ہلاکت کے لیے بنائے گئے ہیں, ہلاکت کے فرزند کہلاتے ہیں.
In the way of their sins.
اب کیونکہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں.
This is the doctrine of infallible scripture.
اور یہ جو ہے یہ لاختا کلام کی تعلیم ہے.
For example, in Ephesians 1 and Romans 9.
اور جس طرح افسیوں 1 میں اور آج کا جو حوالہ رومیو 9 پڑھا ہے اس میں بھی یہ تعلیم پائی جاتی ہے.
Thus it is taught in the Reformed creeds.
اور اسی طرح سے جو اصلاحی عقائد ہیں ان میں بھی یہ تعلیم پائی جاتی ہے.
Westminster Confession 3.
Westminster Confession کا تیسرا باب.
Canons of Dort Head 1.
اور اسی طرح سے جو اصولات مجلس ڈارٹ ہیں اس کا بھی جو پہلا جز ہے وہ پیش کرتے ہیں. یہ
The Bible illustrates and exemplifies God's eternal election and reprobation.
تو بائبل مقدس وہ خدا کے چناؤ اور رد کی تعلیم کو پیش کرتی ہے.
In Isaac and Rebekah's twins, Jacob and Esau.
تو ہم سب جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں بائبل مقدس سے کہ اسحاق کے دو بیٹے تھے, یعقوب اور عیسیٰ, جو کہ جڑوا تھے اور ربکا سے پیدا ہوئے تھے.
Romans 9 verses 11 through 13.
Okay. اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا, تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر. چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسیٰ سے نفرت.
The holy apostle anticipates an objection.
تو جو یہاں پر رسول ہے وہ اس بات کو پیش کرتا ہے.
What shall we say then? Is there unrighteousness? with God.
तो पौलुस यहाँ पे चौथी आयत में कहता है, पस हम क्या करें कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज नहीं.
God forbid, verse 14.
Yes, I already read it.
Why this objection to God's eternal election and reprobation?
तो खुदा के इस चुनाव पर या रद्द पर क्यों एतराज पेश किया जाता है?
A wrong view of God's righteousness or justice or fairness.
और उसकी वजह यह है कि हम खुदा का जो रास्तबाजी का मयार है उसको गलत समझ लेते हैं.
It comes from a man-centered view of righteousness imposed upon God.
उसकी वजह यह है कि हम अपनी तरफ से ही अपना इंसानी जो ख्याल है वो बना लेते हैं, इसलिए हम खुदा की जो रास्तबाजी की तालीम है उसको गलत समझ लेते हैं.
Man thinks that man must determine who is saved or not.
क्योंकि इंसान ये खुद चाहता है कि वो तमीज करे कि कौन निजात याफ्ता है और कौन निजात याफ्ता नहीं है.
But not God.
खुदा नहीं.
Remember what God's righteousness is.
याद रखें कि खुदा की रास्ती या रास्तबाजी है क्या?
It is his unswerving conformity to himself as his sole and complete standard.
तो आसान अल्फाज में कहा जाए तो खुदा जो है वो सच्चाई को पसंद करता है और यही उसके नजदीक जो है रास्तबाजी का मयार है.
God righteously conforms to his mercy.
और इसी तरह से उसका रहम है.
Verses 15 and 16.
क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा और जिस पर तर्स खाना मंजूर है उस पर तर्स खाऊंगा.
God righteously seeks his own glorious name. तो 17.
Okay, 17. क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रुए जमीन पर मशहूर हो.
God conforms to his own sovereignty.
तो खुदा जो है वो अपने हक में मुतलिक होने को जाहिर करता है.
Verse 18.
बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है.
The righteous God is the creator.
जो रास्त खुदा है वही हमारा खालिक है.
20 and 21.
ऐ इंसान भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए?
The righteous God conforms to his own omnipotence.
तो इसलिए जो हाकिम मुतलक खुदा है वो कादर मुतलक है, यानी हर एक चीज पर कुदरत रखता है.
Verse 22.
बस क्या ताज्जुब है कि अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आशकारा करने के इरादे से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत तहम्मुल से पेश आया.
The righteous God conforms to his glory.
तो इसलिए जो रास खुदा है वो अपना जलाल जाहिर करता है.
Verse 23.
ये इसलिए हुआ और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के जरिए से आशकारा करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे.
God's righteousness is transcendent.
तो ये खुदा की वो कुदरत है जो कभी तब्दील नहीं होती.
He is in perfect accord always with himself.
इसलिए क्योंकि वो कामिल है, हर एक सिफ्त में कामिल है.
This evokes the doxology at the end of Romans 11.
और यही जो है ये बात हमें रोमियो 11 में भी मिलती है, यही तरतीब जो है.
How unsearchable are his judgments.
के खुदा की जो सिफ्तें हैं वो कैसी बेपाया है.
And his ways past finding out.
और उसके रास्ते जो है वो नाकाबले तलाश हैं.
For of him
सब चीजें.
And through him.
क्योंकि सब चीज उसी की तरफ से उसी के वसीले से उसी के लिए सब चीजें हैं.
And to him are all things, to whom be glory forever.
उसकी तमजीद अब तक होती रहे, आमीन.
God's righteousness regarding men and angels,
उसकी जो खुदा की जो हिकमत है फरिश्तों और इंसानों के हवाले से,
is exercised in legislative righteousness and punitive righteousness.
तो यहां से हम समझते हैं कि खुदा चुके आदल और मुनसिफ है, इसलिए वो हर एक चीज को एक बाकायदा तरीके से कानूनी, जिसे हम कहते हैं कानूनी तरीके से सब चीजों को करता है.
What is legislating righteousness?
इससे क्या मुराद है, यानी कानूनी तौर पर रास्ती से क्या मुराद है?
It is God setting the law, the ethical standards.
यानी खुदा शरीयत देता है और मयार जो है वो मुकर्रर करता है.
For his rational moral creatures.
उसकी उस मखलूक के लिए जो अकल रखती है.
There is God's permanent moral law.
और खुदा का फिर एक इखलाकी बकायदा, यानी जो मुसलसल रहने वाला एक इखलाकी मयार है.
It is summed in the Ten Commandments.
जिसका जिसे 10 अहकाम में जिसका खुलासा किया गया है.
And there is a witness of this in everybody's conscience.
और ये हर एक इंसान का ज़मीर के लिए जो है वो दिया गया है।
As Romans 1 and 2 teach.
जैसा कि रोमियो 1 और 2 सिखाता है।
As we saw in session 1.
जैसा कि हमने पहले सेशन में सीखा।
Besides God's permanent moral law.
और इसी तरह से खुदा के बकायदा और मुसलसल शरीयत के जरिए हवाले से।
There was also the temporary Mosaic law.
इसके अलावा हम देखते हैं कि एक आरजी मूसवी शरीयत भी थी।
It was for Old Testament Israel and it expired with the coming of Christ.
और ये सिर्फ पुराने अज़ामे के लोगों के लिए थी जो जबकि जब मसीह आया तो ये शरीयत जो है ये नाफिज ना रही।
What is God's punitive righteousness?
इसी तरह से खुदा की जो दूसरी रास्तबाजी है उसके बारे हम देखते हैं।
It is God's just punishment of transgressors for breaking His law.
Punitive कहते हैं यानी कि वो जिसमें सजा और जजा का जो है वो फैसला किया जाता है। तो ये सजा और जजा देने की जो खुदा की रास्ती है उसके हवाले से हम सीखेंगे।
Let me give you some examples of it in this age.
और मैं आपको इसकी कुछ मिसालें आज के जमाने के हवाले से पेश करूंगा।
The expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden for eating the forbidden fruit.
उनका आदम और हवा का बागेदन से निकाला जाना इसकी एक मिसाल है।
Original sin, the judgment of total depravity upon the human race.
और इसी तरह से उनके गुनाह की वजह से इंसानी नस्ल पर जो है आदम का गुनाह जो है वो महसूब होता है, यानी हर एक शख्स जो इस दुनिया में पैदा होता है वो गुनाह के नीचे है, यानी उसकी सृष्टि में गुनाह शामिल है।
For the fall of Adam, its representative head.
और क्यों? क्योंकि आदम हमारा पहला बाप है, इस वजह से उस गुनाह की सजा का इतराक हम सब पर होता है।
The second half of Romans 5 teaches this.
और रोमियो का पांचवें बाब का जो दूसरा हिस्सा है वो ये सारा कुछ सिखाता है।
Another example of God's punitive righteousness is
इसकी दूसरी मिसाल जो है
his destruction of Sodom and Gomorrah for their sodomy.
और दूसरी मिसाल जब हमें सदूम और अमूरा के गुनाहों की सजा से पता चलती है।
Shall not the judge of all the earth do right?
इसलिए जो है खुदा जो है वो लोगों की अदालत करता है।
Genesis 18 verse 25.
पैदाइश 18:25 आप देख सकते हैं।
The destruction of the Canaanites for their sins by the sword of Joshua.
इसी तरह से यशुआ ने कनानियों को मारा तो ये भी खुदा की सजा और जजा की रास्तबाजी या रास्ते की मिसाल है।
Now we need to see that Jesus Christ reveals God's righteousness.
तो अब हम देखेंगे किस तरह यीशु मसीह खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करता है।
He is the incarnate second person of the Holy Trinity.
यीशु मसीह जो है वो पाक तस्लीस का दूसरा अकनूम है या दूसरा शख्स है जिसने जिस्म इख्तियार किया।
In his human nature,
अपनी इंसानी फितरत में,
he was conceived and born without original sin.
जब वो पैदा हुआ तो वो हमारी तरह पैदा नहीं हुआ, यानी कि अगरचे उसकी पैदाइश इंसानी थी लेकिन उस पर जो इंसानी जाति कसूरवारी थी यानी गुनाह की कसूरवारी थी वो उसका इतलाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुकद्दसा मरियम जो थी वो कुंवारी थी और उससे यीशु मसीह पैदा हुआ।
He never transgressed God's law.
उसने कभी भी खुदा के जो है हुक्मों को नहीं तोड़ा।
He always lived in perfect accord with Jehovah as his standard.
इसने अपनी सारी जिंदगी यीशु मसीह ने खुदा के अहकाम के मुताबिक यानी खुदा की शरीयत या अखलाक मियार के मुताबिक गुजारी।
Jesus Christ loved righteousness and hated iniquity.
और यीशु मसीह जो है वो खुदा की रास्तबाजी को पसंद करता है और नाफरमानी से नफरत करता है।
That's Psalm 45 and Hebrews 1.
ज़बूर 45 और इब्रानियों 1.
This righteous Christ went to the cross.
ये रास्त जो यीशु है, रास्त शख्स यीशु, ये हमारी खातिर मसलूब हुआ।
There he brought in everlasting righteousness as Daniel 9 says.
और दानियल 9 के मुताबिक वो रास्ती लाया हमारे लिए।
In Gethsemane he prayed.
गतसमनी के बाग में उसने दुआ की।
Not my will, but thy will be done.
उसने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो।
What did he do at Calvary?
सलीब पर उसने क्या किया?
He humbled himself and became obedient unto death.
और वो इस हद तक फरमाबरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की।
Even the death of the cross.
हत्या के सलीब की मौत।
On the cross,
सलीब पर,
the righteous one died for the unrighteous.
जो रास्त शख्स है वो नारास्तों के लिए मुआ।
There was imputation.
और उस पर डाल दी गई, उस पर महसूब की गई।
Our sins were reckoned to his account.
हमारे सारे गुनाह हमारी सारी रास्ती यीशु मसीह पर लाद दी गई.
There was substitution.
और ये कफारा था.
He bore the punishment we deserved.
जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो यीशु मसीह ने बर्दाश्त की.
The punitive righteousness we should have borne.
वो सजा और जजा जिसके बारे में हम जो है मुतालिया कर रहे हैं.
At the cross there was reconciliation.
जो सलीब है वो सुलह लाती है.
Jesus Christ brought us back to God's friendship.
सलीब पर यीशु की मौत से खुदा और इंसान के दरमियान दोबारा से सुलह हो गई और वो दोस्त बन गए हैं.
This brings us to the great gospel truth of justification.
और ये हमारे सामने तस्दीक की सबसे बड़ी सच्चाई को पेश करती है.
Justification is God's legal declaration of us as righteous.
तस्दीक का जो अमल है, अगर आपको ये मालूम है कि ईमान के कितने दर्जे हैं, तो ईमान के तीन दर्जे हैं, जिनमें पहला जो है वो तस्दीक है. तो तस्दीक खुदा का एक कानूनी या अदालती कह लें कि ऐलान है, जिसमें वो मसीह यीशु में हमें कहता है कि तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं और तुम रास्तबाज ठहर गए हो.
We are justified through faith alone in Jesus.
हम यीशु मसीह में रास्तबाज ठहराए गए हैं.
Because of the fall of Adam, our representative head,
चूंकि आदम जो था हमारा नुमाइंदा था या चूंकि पहला इंसान था,
and because of all our billions of sins,
और इसलिए हमारे बेशुमार गुनाह जो हैं,
there is none righteous, no, not one.
उनमें से एक भी जो है वो रास्त नहीं है, यानी एक भी ठीक नहीं है.
Romans 3 verse 10.
रोमियों 3:10.
All our supposed righteousness is as filthy or menstruous rags in the eyes of God.
और इसी तरह से जिस तरह यसाया में लिखा कि हमारे जो नेक काम है वो भी खुदा की नजर में क्या है, गंदे चीथड़ों की मानिंद हैं.
That's Isaiah 64 verse 6.
यसाया की किताब में ये लिखा है.
So how can the righteous God,
तो किस तरह एक रास्तबाज खुदा रास्तबाज,
declare that sinful people like us are righteous?
वो किस तरह जो है हम जैसे गुनाहगार लोगों को रास्तबाज ठहरा सकते हैं?
How can the righteous God be righteous when he declares that sinners are righteous?
एक रास्तबाज किस तरह रास्त हो सकता है जब वो गुनाहगार लोगों को रास्तबाज ठहरा रहा है?
Surely that's a contradiction in terms.
क्या ये तजाद नहीं है?
We don't go around saying that criminals are good people.
हम ये नहीं कहेंगे कि जो जुर्म करने वाले लोग हैं वो रास्तबाज हैं.
The Bible teaches double or two-way imputation between us and Jesus Christ.
तो बाइबल मुकद्दस है वो दोहरी जो है वो दोहरे तरीके से इस बात को पेश करती है कि हमारी खताएं यीशु मसीह पर डाल दी गई और यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारे खाते में डाल दी गई. इसको डबल इंप्यूटेशन कहते हैं. ठीक है जी.
Our sins were imputed or reckoned to the account of Jesus.
और हमारे सारे गुनाह यीशु मसीह पर डाल दिए गए.
And then he bore the punishment due to us for them.
और जो सजा हमें मिलनी थी वो फिर किसको मिल गई? यीशु मसीह को मिल गई.
That's one imputation.
तो ये पहली imputation है. यानी imputation का तर्जमा होता है महसूब करना, यानी किसी का हिसाब जब महसूब हिसाब से आया है तो उसके खाते में डाल देना.
Now we come to the second imputation.
अब हम दूसरी imputation के तरफ आएंगे.
Christ's righteousness, his perfect obedience to God's law.
तो खुदा speak up again.
Christ's righteousness, his perfect obedience to God's law.
और यीशु मसीह की जो रास्तबाजी है वो उसकी कामिल फरमाबरदारी है.
That is reckoned or imputed to our accounts through faith.
और जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो उसकी सारी फरमाबरदारी किसकी बन जाती है? हमारी.
This is the amazing truth of the gospel.
और ये इंजील की जबरदस्त सच्चाई है.
In this way and this way alone,
और सिर्फ इसी तरीके से या जरिए से,
God is just and the justifier of those who believe in Jesus.
और इसी से खुदा आदल भी है और रास्तबाज ठहराने वाला भी.
That's Romans 3 verse 26.
रोमियो 3:26.
God's saving righteousness is called in Scripture the righteousness of God.
खुदा की निजात बख्श जो रास्तबाजी है, इसे बाइबल मुकद्दस में खुदा की रास्तबाजी कहा गया है.
It is a massive theme in the Epistle to the Romans.
और ये रोमियों के खत में खास तौर पर नुमाया है.
God's saving righteousness is called the righteousness of God because.
खुदा की रास्तबाजी को इसलिए कहा गया है खुदा की रास्तबाजी.
It was conceived by God in his eternal purpose.
क्योंकि ये खुदा के अज़ली इरादे में शामिल है.
Because it was wrought by God in the life and death of Jesus Christ.
और ये सारा कुछ यीशु मसीह की मौत और जिंदगी के हवाले से है.
Because it is granted by God through the Holy Spirit.
क्योंकि ये खुदा की तरफ से पाक रूह के जरिए दी गई है.
And by faith alone.
और यीशु मसीह पर ईमान के जरिए दी गई है.
It is called the righteousness of God because
ये खुदा की रास्तबाजी इसलिए है क्योंकि
it measures up in all things to the righteous standard of God.
क्योंकि ये खुदा का जो मयार है रास्ते का ये उसके मुताबिक है.
Only the Holy Spirit through the Word can convict and convince someone of this.
और ये रूह कुदस है जो कलाम की मनादी के जरिए किसी को भी कायल करता है.
The Holy Spirit must show people their terrible unrighteousness.
और ये रूह कुदस है जो हमारे गुनाहों को हम पर जाहिर करता है.
And exposure to God's punitive righteousness.
और ये भी हम पर जाहिर करता है कि अगर हम ये करेंगे तो फिर हमें सजा मिलेगी या जजा मिलेगी.
Only the Holy Spirit can show people the foreign or alien righteousness of Jesus Christ.
और रूह कुदस से हमें सिखाता है कि ये जो रास्तबाजी हमें मिली है ये हमारी अपनी नहीं है बल्कि हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिली है.
The righteousness that he earned for us 2000 years ago.
वो रास्तबाजी जो उसने 2000 साल पहले हमारे लिए हासिल की.
If we confess our sins,
अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें,
he is faithful and righteous to forgive our sins,
तो वो हमें माफ करने में सच्चा और आदिल है,
and to cleanse us from all unrighteousness,
और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में वो कादिर है.
That's 1 John 1 verse 9.
यूहन्ना का पहला खत उसका पहला बाब 9वीं आयत.
God not only gives us imputed righteousness in justification.
खुदा सिर्फ हम पर रास्तबाजी महसूस भी नहीं करता.
God also makes us righteous in sanctification.
बल्कि खुदा हमें रूह कुदस के जरिए हमारी तकदीस करके हमें पाक भी बनाता है रास्तबाज भी बनाता है.
God infuses righteousness into us.
खुदा रास्तबाजी को हमारे दिलों में डाल देता है.
In regeneration, God first pours righteousness into us.
और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा की रास्तबाजी हमारे अंदर होती है.
In sanctification,
तकदीस के अमल में,
God works righteousness in us more and more.
और खुदा जो है वो भरपूर तरीके से हमारे अंदर रास्तबाजी का काम करता है.
Though believers never become entirely holy in this life.
और ईमानदार जो है इस जिंदगी में मुकम्मल तौर पर अभी जो है वो पाक नहीं होंगे बल्कि उनकी रोज बरोज तकदीस होती चली जाती है.
Sadly, we don't even come close.
और आता के हम इसको खत्म नहीं करते.
In Jesus Christ, we are righteous kings and queens.
और मसीह की रास्तबाजी के जरिए से खुदा ने हमें जो है वो बादशाह और मलका बनाया यानी कि शाही फरजंद बनाया है.
What do we rule over as kings and queens?
और आपको पता है कि बादशाह और मलका क्या करते हैं हुकूमत करते हैं.
We rule over our bodily members, making them instruments of righteousness.
और हम क्या करते हैं अपने जिस्म पर हुकूमत करते हैं ताकि उसे खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें.
That's Romans 6 verse 13.
रोमियो 6:13.
We rule over our thoughts, words and deeds by the power of the Holy Spirit.
हम रूह कुदस की मदद से रूह कुदस की ताकत से अपने ज़हन दिल और कामों के जरिए जो है इस काम को करते हैं.
We conform ourselves to God's holy standard, his law, by his grace.
और हम खुदा के फजल से उसके अहकाम या अखलाकी मियार के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं.
We are not antinomians.
और हम जो है वो शरीयत के खिलाफ नहीं हैं.
Who say that we don't need God's law.
हम ये नहीं कह रहे कि मैं खुदा की शरीयत की जरूरत नहीं है.
God's law is the standard for thankful obedience for those who are saved.
बल्कि हम ये जो अहकाम यानी 10 अहकाम मानते हैं यानी जिसे अखलाकी शरीयत कहा गया है तो ये हम शुक्रगुजारी के तौर पर मानते हैं.
The righteousness of God requires that we live righteously.
तो रास्तबाजी का जो तकाजा है यानी खुदा की रास्ती का ये तकाजा है कि हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें.
We must live righteously in our marriages and homes.
और इसका तकाजा यह है कि हम अपने घरों में खानदानों में क्या करें रास्तबाजी की जिंदगी गुजारें.
And with our children.
हम अपने बच्चों के साथ ऐसी जिंदगी गुजारें.
And as single people.
और अगर हम अभी कुंवारे हैं तो भी हम रास्ती की जिंदगी गुजारें.
We must live righteously in society and in God's church.
और हमें खुदा के कलीसिया में और मुआशरे में भी जो है वो दीनदराना जिंदगी बसर करनी है.
That is living according to the standard of scripture.
और हमें बाइबल मुकद्दस में जो मयार दिया गया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है.
In subjection to our covenant head Jesus Christ.
क्योंकि अब हमारा नुमाइंदा आदम नहीं है बल्कि हमारा नुमाइंदा कौन है यीशु मसीह.
And it is in the church.
और कलीसिया में
that the righteous flourish like palm trees and the cedars of Lebanon.
Or can you
palm trees or the cedars of Lebanon? It's in Psalm 92.
Or mere behar mein khajuron aur deodaron ki baat ki gayi Lebanon ki ayat ki Zabur 92 12 13
including elderly people.
Buzurgon ke hawale se,
because elderly people still bring forth fruit in old age.
Kyunki jo log hain unke wo phaldar hote hain aakhri zindagi ke aakhri hisse mein bhi.
Whereas when trees get really old, they don't bear fruit anymore.
Yani hum aise drakht bane jo phaldar ho, na ke aise jo ke phaldar na ho sake.
Elderly people bring forth fruit in old age. Why?
Jo bure log hain wo aakhri zindagi mein phaldar kyun hote hain?
To show that the Lord is upright.
Kyunki khuda raast hai.
And there is no unrighteousness in him.
Aur uske bahar jo hai wo koi raastbazi nahi hai.
That's Psalm 92 verse 15.
Zabur 92 uski 13vi ayat.
God's righteousness will be publicly revealed to everyone at the last judgment.
Aur khuda ki jo raastbazi ka mukammal izhar jo hai wo aakhri din hoga, yani adalat ke din hoga.
The Lord Jesus Christ will judge the world in righteousness.
خداوند یسوع مسیح راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا.
That's Acts 17 verse
31. اعمال 17:31.
By what standard will he judge?
کون سے معیار کے مطابق وہ ہماری عدالت کرے گا؟
The standard is the righteous character of God expressed in his law.
خدا کے اسی راستبازی کے معیار کے مطابق وہ ہمارا انصاف کرے گا جو کہ خدا کی شریعت میں ہے.
What will the devil and his demons and the wicked unbelieving world receive on that day?
Aur jo shaitan hai uske chele ya farishte hain aur jo bure log hain yani shareer log hain unke sath us din kya hoga?
God's punitive righteousness.
Unhe kya milega? Saza milegi.
Everlasting hell.
Wo hamesha tak jahannam mein rahenge.
With degrees of punishment according to the person's sins.
اور جو گناہ انہوں نے کیے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے لیے مختلف بائبل مقدس میں آیات استعمال ہوئی ہیں کہ انہیں سزا ملے گی اور ان کی سزا کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی.
What about elect believers in Jesus?
لیکن جو لوگ یسوع مسیح میں برگزیدہ کیے گئے ہیں یا چنے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟
We receive a crown of righteousness.
ہمیں راستی کا تاج ملے گا.
That's 2 Timothy 4 verse 8.
دوسرا تیموتھیس 4:8 آیت.
We receive rewards of grace according to our works.
اور ہمیں ہمارے کاموں کا فضل کے خدا کے فضل کے مطابق اجر ملے گا.
We receive eternal inheritance in the new heavens and the new earth.
اور ہمیں نئے آسمان اور نئی زمین میں میراث ملے گی.
Wherein dwelleth righteousness.
جہاں پہ صرف راستباز بسے رہیں گے.
That's 2 Peter 3.
دوسرا پطرس تیسرا باب.
Deuteronomy 32 verse 4. Deuteronomy 32 verse 4.
سنیل مجھے وہ والی بائبل پڑھیے. استثناء Deuteronomy
32 verse 4.
وہی چٹان ہے, وہ وہی چٹان ہے, اس کی سنت کامل ہے, کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں. وہ وفادار اور بدی سے مبرہ ہے, وہ منصف اور برحق ہے.
Did you enjoy hearing about God's righteousness?
کیا آپ خدا کی راستبازی کے بارے میں سن کر خوش ہو رہے ہیں؟
God's wisdom is just as wonderful.
اور خدا کی جو حکمت ہے اور جو اس کا عدل ہے وہ شاندار ہے.
So what is God's wisdom?
خدا کی حکمت کیا ہے؟
Here again it's helpful to think of the basic idea.
یہاں سے ہمیں اس کے بارے میں سیکھنے میں مدد ملتی ہے.
The basic idea of righteousness is the standard.
اور پھر دوبارہ سے جب ہم خدا کی حکمت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سے اس کے سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کا معیار ہے.
The basic idea of wisdom is adaptation.
اور یہ ایک طریقہ ہے جسے وہ اختیار کرتا ہے.
So what is God's wisdom in himself?
اور خدا کی حکمت کیا ہے؟
It is his perfect adaptation to himself as his only infinite blessedness.
اور یہ اس کی مبارک حالی ہے جسے وہ اپنی راستبازی کے لیے اپنی راستبازی میں استعمال.
What is God's wisdom outside himself?
اور اس کے باہر جو ہے وہ خدا کی حکمت کیا ہے؟
It is his perfect adaptation of all things.
اس میں تمام چیزوں کی جو ہے وہ باتیں شامل ہیں.
In his eternal counsel and works.
جو اس کی مصلحت کا حصہ ہے.
To serve his own glory.
جو کہ اس کے جلال کا اظہار بنتی ہیں یا اظہار ہوتی ہیں.
In God's wisdom,
خدا کی حکمت میں,
He chooses and attains the highest end or goal.
اور اس میں وہ ہدف کو مقرر کرتا ہے
Himself.
خود میں.
Then He chooses and uses the best means to attain this highest goal.
اور وہ اس کے لیے بہترین جو ہے وہ ذرائع کا استعمال کرتا ہے.
The highest end, the best means.
بہترین جو طریقہ کار اور ان کے لیے بہترین.
God adapts everything for His glory.
اور خدا اپنے جلال کے لیے مختلف طریقوں کو استعمال کرتا ہے.
Now let us consider God's other attributes or perfections.
اب ہم خدا کی دوسری کاملیتوں اور صفات پر غور کریں گے.
In connection with His wisdom.
جو کہ اس کی حکمت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں.
His wisdom is infinite.
جو اس کی حکمت ہے وہ کامل ہے.
Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God.
اور یہ اس کے اس کا عرفان ہے, اس کی حکمت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے انفینٹ کے لیے, بے پایا, یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہوتی.
For who hath known the mind of the Lord?
خدا کی عقل کو کس نے جانا؟
That's Romans 11.
رومیوں 11 میں لکھا ہے.
His wisdom is not only infinite but self-sufficient.
خدا کی حکمت جو ہے وہ نہ صرف کامل ہے بلکہ وہ کسی دوسرے کی عقل پر بھی انحصار نہیں کرتی.
He never needs advice or help.
وہ کسی کی صلاح مشورہ نہیں لیتا.
For who hath been his counselor?
کون اس کا مشیر ہوا؟
Or who hath first given to him?
اور کس نے اسے کوئی صلاح دی؟
And it shall be recompensed unto him again.
اور یہی باتیں کہ ہم خدا کو, یعنی کہ کوئی خدا کو صلاح مشورہ نہیں دے سکتا.
That's Isaiah 40 and Romans 11.
رومیو 40 اور رومیو 11.
God's wisdom is eternal.
خدا کی جو عقل ہے, خدا کی جو حکمت ہے وہ ابدی ہے.
For he never was without his wisdom.
اور وہ کچھ بھی جو ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا اس میں.
That was a key argument against the Arians.
اور یہ جو ایرینز ہیں ان کے خلاف, یعنی جو ایرینز ان کی بدعت تھی, یہ اس کے خلاف تعلیم ہے.
God's wisdom is omnipotent.
خدا کی جو حکمت ہے وہ قادر مطلق ہے, یعنی قدرت کاملہ پر مشتمل ہے.
For he never fails to attain his end or goal.
اور وہ تب تک نہیں واپس لوٹتی جب تک وہ اپنا کام پورا نہ کر لے.
God's wisdom is true.
خدا کی جو حکمت ہے وہ سچائی پر مبنی ہے.
For he never tells lies to attain his end.
اور وہ اس کے لیے جھوٹ کا استعمال نہیں کرتا.
And we mustn't either.
لیکن ہم کرتے ہیں اکثر.
God's wisdom is righteousness, is righteous.
خدا کی حکمت جو ہے وہ راست ہے.
He never resorts to wickedness.
اور وہ جو بدی ہے اس کو برداشت نہیں کرتی.
But always acts in accordance with himself as his own standard.
بلکہ جو خدا نے خود معیار مقرر کیا ہے یہ اس کے مطابق کام کرتی ہے.
God's wisdom is also seen in his three persons.
خدا کی جو حکمت ہے وہ تین شخصیات میں, خدا کے ذات میں تین شخصیات کو کے ذریعے بھی ظاہر ہوتی ہے.
The second person of the Trinity is perfectly adapted to the first person of the Trinity.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو دوسرا شخص ہے تثلیث کا.
The eternally begotten Son fits beautifully in the bosom of his father.
جو دوسرا شخص یسوع مسیح ہے تثلیث کا, دوسرا اقنوم یسوع مسیح جسے ہم بیٹے کے نام سے جانتے ہیں, وہ باپ کی گود میں ہے.
That's John 1 verse 18.
یوحنا 1:18.
The Son is the express image of the father.
اور جو بیٹا ہے وہ باپ کی شبیہ ہے یا باپ کو پیش کرتا ہے.
The Son is the radiant effulgence of the father's glory.
اور بیٹا جو ہے وہ باپ کے جلال کا مکمل اظہار کرتا ہے.
That's Hebrews 1 verse 3.
عبرانیوں 1:11.
The Son is the wonderfully self-expressive word of his father.
اور اسی طرح سے بیٹا بھی جو ہے وہ خدا کا کلام ہے.
John 1 verse 14.
یوحنا 1:14.
Perfectly adapted.
کامل طور پر.
The third person of the Trinity is also perfectly adapted to the first and second persons.
تو اسی طرح سے جو تیسرا شخص ہے پاک تثلیث کا رول کچھ وہ بھی بالکل باپ اور بیٹے کے جیسا ہی ہے.
The Holy Spirit is the personal breath of love in the Godhead.
اور جو رول کچھ ہے وہ خدا کی محبت کا جو ہے وہ اظہار ہے. برتھ کہتے ہیں سانس کو, یعنی یہ سانس کی طرح ہے.
The personal breath of love from the Father to the Son.
یعنی یہ باپ کی طرف سے بیٹے کی طرف اس کو سانس کہا جاتا ہے.
The personal breath of love from the Son back to the father.
और इसी तरह से बेटा भी जो है वो बाप की तरह मोहब्बत का इजहार पाक रूह के जरिए से करता है.
The Holy Spirit is the personal bond of love.
और जो रूह कुछ है वो मोहब्बत का बुनियादी तौर पर ताल्लुक है.
Whereby the father embraces the son.
और जिसमें बाप जो है वो बेटे को गले लगाता है.
And the son cleaves to the father.
और इसी तरह से बेटा अपने बाप को.
This is blessed and orthodox biblical Trinitarianism.
और यही बाइबली जो है वो तसलीसी तालीम है.
Explained through the lens of the wisdom of God.
जो कि हम खुदा की हिकमत से देखते हैं.
The adaptation of the three persons in the Godhead to each other.
और फिर खुदा के उन तीनों शख्सियत के तरीकाकार से.
The same God who is wise in his attributes and perfections.
और इस तरह जो वो खुदा जो अपनी कामलियतों और खूबियों में कामिल है.
Wise in his persons.
और इसी तरह से शख्सियत भी जो है वो भी आकल है यानी बहुत ज्यादा हिकमत रखती है.
Is also wise in his eternal decree.
और इसी तरह से वो अपने असली इरादे में भी जो है वो हिकमत रखता है. हर एक बात में उसकी हिकमत पाई जाती है.
The end or goal of the whole created universe.
तमाम बनाई गई तख्लीक में.
Is that glory is ascribed to the triune God forever and ever.
खुदा खुदाए सालूस की जो खुदाए सालूस का जो जलाल है वो हमेशा से हमेशा तक है.
So absolutely all things are means to that end.
तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी चीजें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जितनी भी चीजें बनाई गई हैं वो सब खुदा का जलाल जाहिर करती हैं.
Including you and me.
इसमें हम सब भी शामिल हैं.
Decreed and created and used by Jehovah for his glory.
तो हम सबको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है.
For of God as to source,
और खुदा ही चूंकि इसका माखिज है.
And through him as the governor,
और इसी तरह से वो हुकूमत भी करता है.
And to him as to the goal,
और वही इसका हदफ भी मुकर्रर करता है. वही इसका यानी कि सब कुछ खुदा ने ही मुकर्रर किया है.
Are all things,
और सारी चीजें.
To whom be glory forever and ever, amen.
और उसी की तमजीद पता होती है जिसके लिए सारी चीजें.
That's Romans 11 verse 36.
और रोमियो 11:36 में यही लिखा है.
In God's eternally wise decree.
और खुदा की इस हिकमत भरे असली इरादे में.
I want to show you how various things are perfectly adapted as means to that end.
और इसमें हम उन चीजों का जिक्र करेंगे उन तरीकाकार का जिन्हें जिनको असली इरादे में शामिल किया गया है.
Jesus Christ serves God's glory.
यीशु मसीह खुदा के जलाल के लिए काम करता है.
The elect church serves Jesus Christ, the preeminent one, and so God's glory.
और इसी तरह से कलीसिया यीशु मसीह की रहनुमाई में खुदा का जलाल जाहिर करती है.
Reprobation serves the elect church, which serves Christ and God's glory.
और इसी तरह से रद्द किए हुए जो लोग हैं वो कलीसिया के जरिए यानी के क्योंकि वो कलीसिया से अलग है वो खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं.
As Romans 9 verse 12 says,
इस तरह रोमियो 9:12 में लिखा है,
Reprobate Esau serves elect Jacob. I'm summarizing it mostly. Okay. Reprobate Esau is probably easy just to quote it.
तो आपको पता है कि याकूब को बरगुजीदा कहा गया है और ईसाउ को रद्द किया हुआ कहा गया है.
As do all things in creation and providence. And in heaven and in earth.
और जो कुछ इस कायनात में बनाया गया है वो सब खुदा के जलाल के लिए है.
This is all according to God's wisdom in his eternal decree and counsel.
और जो कुछ होता है वो खुदा के असली इरादे के मुताबिक और उसकी जो मसलहत है उसके मुताबिक होता है.
And what is our wisdom in this regard?
लेकिन इस सिलसिले में हमारी हिकमत क्या है?
It is our wisdom to adapt our thinking to believe God's eternal wise decree.
हमारा काम यह है कि हम जो है अपनी हिकमत को खुदा के असली इरादे के मुताबिक इख्तियार करें जिसने हमें बनाया है.
For God's wisdom is justified or declared righteous by all his children.
क्योंकि खुदा का जो असली इरादा है और जो उसकी रास्तबाजी है वो उसके बरगुजीदा बच्चों के लिए है या फरसंदों के लिए है.
That's Luke 7 verse 37. Luke 7 verse 37.
लुका 7:36.
God's first work outside himself is that of creation, a work of great wisdom.
तो जो हम खुदा का तख्लीक का काम देखते हैं तो ये खुदा की बड़ी हिकमत का काम है.
The Lord by wisdom hath founded the earth.
खुदा ने अपनी हिकमत से जमीन को बनाया.
By understanding he established the heavens.
और इसी तरह से उसने आसमानों को भी बनाया.
That's Proverbs 3 and Proverbs 8.
और इसी तरह से ये मिसाल 3 और 8 में लिखा है.
Think too of God's wisdom in the 6 days of Genesis 1.
और जब हम पैदाइश 1:1 का मुताला करते हैं तो वहां पर खुदा की तखलीक का जायजा लें.
God is preparing and adapting the world for man.
और खुदा जो कुछ वहां पर बना रहा है या तैयार कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? इंसान के लिए कर रहा है.
So that man may serve God.
ताकि इंसान जो है वो खुदा की खिदमत कर सके.
But what about the atheistic theory of evolution?
लेकिन जो मुल्हदों की का नजरियत का है वो क्या है?
It claims that the world is not the product of the wisdom of God.
वो कहते हैं यानी जो खुदा का इनकार करते हैं खुदा के वजूद को कहते हैं कि ये जो कायनात बनी है ये खुदा की हिकमत का जो है वो हिकमत से नहीं बनी.
Instead, the universe is a random occurrence through a gigantic explosion.
उनके मुताबिक दुनिया जो है वो खुदा ने नहीं बनाई बल्कि ये एक जोरदार धमाके से बनी है.
And everyone knows when you blow something up, order results, right?
तो हम सब जानते हैं कि जब कोई धमाका होता है तो कोई भी चीज जो है वो तरतीब में नहीं होती.
Evolutionism claims that life forms are mere accidents of lucky chance.
और उनके नजदीक जो है इंसानियत यानी इंसान जो है वो हादसे से आया यानी अचानक पैदा हुआ है उसकी कोई बकायदा प्लानिंग नहीं की गई थी.
Denying the wisdom of God in himself and in creation.
और खुदा के हिकमत को रद्द करना और कायनात के इस ख्याल कायनात के खालिक को रद्द करना.
The fool hath said in his heart, there is no God.
तो हम ज़बूर में पढ़ते हैं कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं.
We're back with Psalm 14.
ज़बूर 14.
Now think of God's wisdom in providence.
अब हम खुदा की हिकमत को खुदा की परवरदिगारी में देखेंगे.
This is God's wise upholding and governing and directing of all things according to his eternal plan.
तो खुदा की परवरदिगारी का मैंने आपको कल भी बताया था कि खुदा की परवरदिगारी का मतलब है कि खुदा किस तरह चीजों को मुतय्यन और मुकर्रर करता है. मिसाल के तौर पर बारिश, बादल, समुंदर, दरिया, कीड़े मकोड़े, परिंदे, उनका खाना पीना, ये सब कुछ खुदा के परवरदिगारी के काम है. या जमीन जो है वो स्पेस पर ठहरी हुई है तो वो एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते, ये सारे खुदा के परवरदिगारी के काम है.
O Lord, how wondrous are thy works.
तो खुदा का कलाम कहता है खुदा के तेरे काम कैसे शानदार है या अजीब है.
In wisdom thou hast wrought them all.
और खुदा ने अपनी हिकमत से ये सारा कुछ बनाया है.
The earth is full of his riches.
और खुदा की जो जमीन है वो इरफान से भरी हुई है.
That's Psalm 104.
ज़बूर 104.
God's providence is the subject of our evening session.
खुदा की जो परवरदिगारी है वो आज शाम का हमारा सेशन है.
So we will say no more here.
तो हम उसके लिए ना नहीं कहेंगे.
We see the wisdom of God in Jesus Christ.
हम खुदा की हिकमत को यीशु मसीह में देखते हैं.
According to his human nature in Luke 2.
लूका 2 के मुताबिक उसकी इंसानी फितरत में.
The child Jesus grew and waxed strong in spirit.
हम देखते हैं कि लिखा कि यीशु कद्दोकामत में और हिकमत में बड़ा होता चला गया.
Filled with wisdom.
Yes.
And the boy Jesus increased in wisdom and stature as he grew up.
Yes, I already saw.
He was filled with the spirit of wisdom and understanding. Isaiah 11.
और यशायाह 11 में इस बात को पेश किया गया कि यीशु मसीह किस तरह हिकमत से भरा हुआ होगा.
He was wiser than Solomon, the wisest of men.
और यीशु मसीह सुलेमान से भी ज्यादा जो है वो अकलमंद होगा.
For all the treasures of wisdom and knowledge are hidden in him.
और यीशु मसीह में हिकमत की तमाम पोशीदा खजाने जो है वो मौजूद हैं.
Yea, he is the very wisdom of God. Proverbs.
वही खुदा की हिकमत है.
The world in its supposed wisdom and philosophy.
दुनिया जो है वो हिकमत को फलसफे में अक्सर जो है वो बयान करती है.
Knew not God.
ना कि खुदा को.
And crucified the Lord of glory.
लेकिन खुदा यीशु मसीह जो जलाल का बादशाह है.
That's 1 Corinthians chapters 1 and 2.
पहले ग्रंथियों में यह बयान किया गया है.
But God in his wisdom,
लेकिन यीशु मसीह जो है वो खुदा की हिकमत है.
Used the folly of the Jews and the Romans,
जो कि रोमियो के लिए और यहूदियों के लिए उनके नजदीक वो हिकमत ज्यादा हिकमत वाला शख्स नहीं था.
To execute Christ on the cross,
इसलिए उन्होंने उसे मसलूब किया.
Where he died for our sins.
अब और वो हमारी खताओं के लिए मसलूब हुआ, मारा गया.
Think of the wisdom of God in the gospel of our salvation.
और खुदा की हिकमत हमारी निजात की इंजील में जाहिर होती है.
Romans is scripture's most systematic presentation of the good news.
جو رومیو کا خط ہے وہ انجیل کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ پریزنٹیشن ہے.
Man's sins and God's righteousness in justification, chapters 1 through 5.
اور پہلے سے پانچواں باب جب ہم پڑھتے ہیں رومیو کا تو اس میں ہمارا گناہ اور پھر خدا کی حکمت اور خدا کی راستبازی کو پیش کیا گیا ہے.
Sanctification and assurance, chapters 6 through 8.
اور 6 سے 8 باب میں جو ہے نجات کی تسلی جو ہے وہ شامل ہے اور ہماری تقدیس کا عمل شامل ہے.
Double predestination and preaching to Jews and Gentiles, chapters 9 through 11.
اور ہمارے جو ہے ازلی تقدیر کے بارے میں وہاں پر پیش کیا گیا ہے.
Rich ethical teaching on godly living, chapters 12 through 16.
اور 11 سے 16 باب میں دینداری کی زندگی گزارنے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے.
And what is Romans last verse?
اور رومیو کی آخری آیت کون سی ہے؟
To God only wise be glory through Jesus Christ forever.
اور کہ خدا ہی صرف جو ہے وہ حکمت سے پورا اور یسوع مسیح کے ذریعے اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے.
That's the doxology of Romans 16 verse 27.
اور یہ جو ہے رومیو 16 27 کی جو ہے وہ تعلیم ہے.
Jude speaks of the common salvation of all believers.
Speak up again.
Jude speaks of the common salvation of all believers.
جو یہودا کا خط ہے وہ ایمانداروں کی عام جو ہے وہ نجات کے بارے میں بیان کرتا ہے.
That we are called and sanctified and preserved in Jesus Christ.
کہ ہم سب کو نجات ملی ہے اور ہم سب یسوع مسیح میں محفوظ کر دیے گئے ہیں.
And Jude ends with this doxology praising God's wisdom.
اور جب ہم یہودا کے خط کی آخری حصہ پڑھتے تو وہاں لکھا ہے اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جیسا ازل سے ہے اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے آمین.
What of God's wisdom in the 66 books of Scripture?
خدا کی حکمت 66 کتابوں میں کیسے ہے؟
Inspired, infallible, inerrant.
کہ خدا کا کلام لا ریب ہے، یقینی ہے اور اس میں کسی کی طرح کی غلطی شامل نہیں ہے.
All sufficient and entirely supreme.
اور یہ سب سے جو ہے زیادہ ترجیح رکھتا ہے اور ہمارے لیے کافی ہے.
This holy book is designed by God to make us.
یہ کتاب اس لیے ترتیب دی گئی ہے.
Wise unto salvation through faith in Christ.
تاکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے سے عقل مند بنیں.
And what is God's wisdom in us?
خدا کی حکمت ہم میں کیا ہے؟ یعنی خدا کی حکمت ہم میں کیسے کام کرتی ہے؟
Because wisdom is a communicable attribute.
کیونکہ خدا کی جو یہ صفت ہے کہ وہ حکیم ہے یعنی حکمت سے پورا ہے تو اسی لیے یہ حکمت اس نے ہمیں بھی دی ہوئی ہے.
Wisdom for us centrally is fearing God.
حکمت ہمارے اندر کیسے کام کرتی ہے؟ ہم حکمت کا اظہار کیسے کرتے ہیں کہ ہم خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
اور خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے.
This is the definition of wisdom in the wisdom literature.
اور یہ جو حکمت کی تعریف ہے یہ امثال کی کتاب جسے حکمت کی کتاب کہا جاتا ہے اس میں شامل ہے.
Job, Psalms, Proverbs.
زبور میں اور امثال میں.
The supreme reality is the triune God in Jesus Christ.
اور جب ہم پاک تثلیث کی حقیقت کو یا سچائی کو یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں.
Sovereign, Creator, Lord, Savior, Judge.
تو وہ حاکم مطلق ہے، قادر مطلق ہے، بادشاہ ہے، عادل ہے اور منصف ہے.
As revealed in the Bible.
جیسا کہ بائبل مقدس میں ظاہر کیا گیا ہے.
Our wisdom is making him the end and goal of our lives every day.
اور ہر روز جو ہے ہم خدا کے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں جس کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے.
And adapting all our thoughts, speech and behavior to him.
اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں یا کرتے ہیں وہ سب جو ہے اس کے لیے اسی کی حکمت کے مطابق ہے.
This is true wisdom.
اور یہی حقیقی حکمت ہے.
It is better than rubies.
اور یہ جو ہے یہ مرجان سے زیادہ قیمتی ہے.
And all the things that are to be desired cannot be compared to it.
اور ہماری کوئی بھی چیز ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا.
Proverbs 8 verse 11.
امثال 8:11.
According to the book of Proverbs, there are major ways that people show that they are not wise but really foolish.
اور امثال کی کتاب ان باتوں کو ظاہر کرتی ہے جو لوگ اکثر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عقل مند ہیں لیکن اصل میں وہ بیوقوف ہوتے ہیں.
نمبر 1.
پہلی بات.
کیونگ ان ٹو پیئر پریشر.
کین یو پرووائڈ دی ورڈز؟
پیئر پریشر. دی پیپل یور ایج یور سارٹ اف فرینڈز. کیونگ ان. کولاپسنگ. گیونگ ان ٹو دیم.
اوکے. کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی طرح کے لوگ جو ہے وہ کسی مشکل میں پڑ جائے.
یو گیٹ ان ود اے بیڈ کراؤڈ اینڈ جوائن ان ود دیئر سینس.
और आप जहां किसी अज्यूम में शामिल हो जाए उनके गुनाहों में शामिल हो जाए.
If wisdom is adapting to God revealed in scripture,
और जो हिकमत बाइबल मुकद्दस में खुदा की हिकमत बयान की गई है,
folly is adapting to wicked people.
तो अगर हम शरीरों के जैसे काम करेंगे फिर हम खुदा की हिकमत को जो है वो इख्तियार नहीं कर सकेंगे.
नंबर टू, the fool is seduced by a loose woman.
और इसी तरह से जो अहमक शख्स है वो फाश औरत के पीछे जाता है, उसको भी अहमक कहा गया है.
Fornication and adultery is the way of a fool that leads to hell.
और ज़नाकारी और हरामकारी जो है ये हमाकत की जो है ये की नुमाइंदगी करती है या उनकी तरफ ले जाती है.
Women also are seduced by lustful men.
और जो कोई भी औरत जो है वो किसी ऐसे शख्स की तरफ जो है वो रागिब हो सकती है.
Who wickedly flatter them.
जो कि शेखी से उसकी तारीफ करता है.
Merely in order to get them to bed.
ताकि वो उससे उसके साथ हरामकारी कर सके.
Number three for folly in Proverbs.
और तीसरी जो बेवकूफी या हमाकत की बात है.
Is not listening to godly parents.
के जो दीनदार वालदैन है उनकी बात ना सुनना यानी ना फरमानी करना.
Repeatedly Proverbs says, my son, listen to my words.
और यहाँ पर आयत ये बयान किया कि बेटे मेरी तादीब को सुन.
Disaster in this life and the next.
इस जिंदगी की तबाही या अगली जिंदगी में तबाही या हमारा सत्यानाश.
All those who don't listen to their wise father or mother.
ये इस वजह से भी हो सकता है कि जब हम अपने जो हमारा अक्लमंद बाप या माँ है उनकी बात को ना सुने.
A fourth way of folly in Proverbs.
और चौथी जो बेवकूफी की किस्म है.
Is not heeding godly rebukes.
के हम जो हमें तंबीह की जाती है हम उसको हकीर जाने.
Godly rebukes including those from church office bearers.
और ये जो है हमें जो कलीसिया में ओहदा रखते हैं उनकी तरफ से भी हमें सरज़निश की जाती है, यानी हमें किसी गलती या गुनाह पर हमें अगर नसीहत की जाए.
Instead people get angry and huff.
और ये हमारी कलीसियाओं में आम है कि अगर कोई पादरी किसी शख्स को कुछ कह देता है तो वो बंदा नाराज होकर चर्च छोड़ जाता है.
Who is he to tell me what to do?
क्योंकि वो कहता है कि इससे नहीं पता कि मुझे ये बात नहीं पसंद.
All of us need wisdom from God.
और हम सब को खुदा के हिकमत की जरूरत है.
We need wisdom to control our tongues.
हमें खुदा की हिकमत की जरूरत इसलिए ताकि हम अपनी जुबानों को काबू में रख सकें.
That's James 3 and Proverbs.
ये याकूब 3 और अम्साल की किताब में भी दर्ज है.
We need wisdom to receive discipline from God rightly.
और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें.
We need wisdom to administer discipline to our children rightly.
और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत कर सकें.
And we need wisdom to avoid foolish comparisons of ourselves with others.
और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम बेवकूफी के तरीकों से अपना मुआवजा दूसरों के साथ ना करते रहें.
2 Corinthians 10 verse 12. 2 Corinthians 10 verse 12.
क्योंकि हमारी ये जुर्रत नहीं कि अपने आप को उन चंद शख्सों में शुमार करें या उनसे कुछ निस्बत दें जो अपनी नेक नामी जताते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को आपस में वजन करके और अपने आप को एक दूसरे से निस्बत देकर नादान ठहराते हैं.
Don't go on Facebook or TikTok.
Facebook पर या TikTok पर.
And see all these people with glamorous lives and fancy holidays.
तो उन लोगों के पीछे ना जाएं जो बड़ी शानदार या ऐसी जिंदगी शाहाना जिंदगी गुजारते हैं.
And beautiful clothes and boats.
और बहुत ज्यादा जो है वो कश्तियों पर या घूमते हैं या बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते हैं चमचमाते.
And say, poor me, I don't measure up.
तो इसलिए अपना जो है तकाबुल उनके साथ ना करें.
Wisdom is engaging in hard work and not being lazy.
हमारी हिकमत जो है वो इस तरह से भी है कि हम सख्त मेहनत करें और सुस्त ना हो.
Be wise and emulate the ant, O sluggard.
और इम्साल किताब में आपको वो मिसाल दी गई है कीड़े की या चींटी की, तो उससे सबक सीखें.
It is foolish, not wise, to love much sleep.
और ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई अकलमंदी की बात है कि हम ज्यादा देर सोते रहें काहिलों की तरह, यानी काहिल बन जाएं.
Proverbs says, "You turn on your bed like the hinge of a door."
उनका जो बिस्तरा वो हिलता रहता है, यानी उस बिस्तरे पे बस हिलते रहते हैं.
A certain amount of movement, but it never actually goes anywhere.
और वो वहीं पर जो है वो हिलते रहते हैं और कहीं काम पर नहीं जाते.
Wisdom must determine our walk or life.
क्योंकि जो हिकमत है वो हमारी जिंदगी के कहने के तायुन करती है.
Ephesians 5 verse 15. Ephesians 5 verse 15.
बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो.
For this wisdom we must pray and ask God.
इसलिए हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए.
If any of you lack wisdom,
अगर किसी में हिकमत की कमी हो,
let him ask of God who gives richly.
तो वो खुदा से मांगे जो फयाजी से देता है.
That's James 1 verse 5.
और ये याकूब 1:5 में लिखा है.
And we must seek wisdom by God's grace.
और हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की हिकमत के तालिब होते हैं खुदा यीशु मसीह के फजल से.
Thank you for listening because I know you're a bit tired.
आप सबका सुनने का शुक्रिया क्योंकि मैं जानता हूं आप सब थक गए हैं.
Amen.
Amen. Amen.